नबी, जब मैं ये सारी चर्चा सुन रहा था तो मेरे माइंड में एक ख्याल आ रहा था, ये कि आमतौर से हम ट्विंस की बात सुनते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, जो जन्म लेते हैं और जन्म से ही अपने ऑस्ट्रेलिया के भी दो भाई आते हैं, ट्विंस हैं, आइडेंटिकल, और बहुत दफा अखबारों में भी उनके फोटो छपे हैं, लोग पहचान नहीं पाते कौन क्या है, मिलते जुलते हैं, लेकिन वो फिजिकल बायोलॉजिकल ट्विंस होते हैं। ये हमारी जो बड़ी दादी हैं, ये साइकोलॉजिकल ट्विंस हैं। इनके इसकी मिसाल दुनिया में नहीं है मेरे ख्याल में। कभी तक हमने किसी पीरियडिकल में, मेडिकल प्रोफेशन के भी भाई बहन बैठे हैं और भी, कभी किसी ने साइकोलॉजिकल ट्विंस की बात नहीं सुनी होगी। ये इट इज ए न्यूज कि भाई यहाँ पर इतने सारे बहने, गुलजार बहन, दादी जी, दादी जान की, चंद्रमणि दादी, सब दादियां, मनोहर दादी, एक से एक अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए भी एक कैसे हैं, ये साइकोलॉजिकल ट्विंस ऐसा हमें लगता है। जैसे बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है और बनी बनाई बन रही है, तो कई दफा जब उससे उतर आते हैं तो हमारे संघर्ष शुरू होते हैं, संस्कारों का टकराव होता है और फिर दूसरी बातों में चले जाते हैं। तो लगता है ऐसा है कि ड्रामा में वो भी एक पर्पस है, ड्रामा में कोई चीज विदाउट पर्पस, विदाउट एम नहीं लगती है, तभी उसको हम एक्यूरेट कहते हैं। एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए समुद्र में लहरें आती हैं, सागर के किनारे के साथ टकराती हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं, तो वो अपना असर उस साहिल पर, कोस्ट लाइन पर छोड़ जाती हैं। कोस्ट लाइन अपनी अपना काम करता है, लहरें अपना काम करती हैं, उनका काम टकराना है, उनका काम टक्कर लेकर उनको वापस भेजना है, दोनों का ये भी काम निश्चित है, इसी का नाम सागर है। तो ऐसा लगता है कि कहीं पर जहां संस्कारों का टकराव होता है, वो भी जो हमारे रफ कॉर्नर्स हैं हमारे संस्कारों के, वो जो लहर आके हमारे रफ कॉर्नर्स के साथ टकराती है, वो हमारे संस्कारों की जो रफनेस है उसको स्मूदन करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसको रूप रंग देने के लिए। जैसे शिक्षा देने के लिए हमें कुछ शिक्षक निमित्त हैं, वैसे हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे परीक्षक भी, इन्विजिलेटर भी, हमारी नोटबुक, आंसर बुक चेक करने वाले भी, सब तरह के मटेरियल इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिर्फ टीचर ही टीचर हों तो फिर काम कैसे चलेगा? कोई एग्जामिनेशन पेपर सेट भी करेगा, कोई इम्तहान की बुक देखेगा, कोई मार्क्स देगा, कोई फेल करेगा, कोई पास करेगा, तभी सारा ईश्वरी विश्वविद्यालय का काम चलेगा, तभी वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब तरह की बात होगी। तो ऐसा लगता है कि वो भी जो सब है पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, और उसमें भी हमारी एजुकेशन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली जैसे एजुकेशन कई तरह की है, वो समाई हुई है। अगर नजर नहीं आते तो हम कैसे कहते हैं कि साथ साथ है? कोई कह सकता है कि अनुभव ऐसा होता है, बाबा की जो मदद मिलती है, जो टचिंग होती है, या सहज रूप से बाबा कार्य करा देते हैं, जो हमारे मन और चित्त में ना हो वो बात हो जाती है, लगता है कि बाबा ही करा रहे हैं, करण करावन हार हैं, तो उससे हम समझते हैं कि बाबा हमारे साथ साथ है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना जितना हम अपने देह से न्यारे होते जाते हैं और स्वयं को लाइट और माइट के स्वरूप में अनुभव करते हैं, स्थित करते हैं, उतना उतना हम महसूस करते हैं। हो सकता है कि अंत में शायद हमने ही कहा हो कि परमात्मा या बाबा सर्वव्यापी है, कि कहीं भी हम जाते हैं हर कोई ऐसा महसूस करता है कि बाबा मेरे साथ है। बहुत से जो कृष्ण उपासक लोग हैं वो कुछ ऐसे चित्र भी छपवाते हैं कि हर गोपी देखती थी कि कृष्ण मेरे साथ रास कर रहा है, या जो भी खेल पाल वो करते थे उनको ऐसा अनुभव होता था कि वो हमारे साथ है। तो उन्होंने उनके गीता का भगवान श्री कृष्ण को मान लिया, और चित्रकार को वैसा बनाना सहज है, नहीं तो बिंदु के साथ रास कैसे करेंगे? रास के लिए तो कुछ हाथ पकड़े, कुछ पांव को थोड़ी झनक हो, कुछ भाव बीने तरीके से वो अंगा अभिव्यक्ति करें, तभी वो कुछ देखने में आए। राष्ट्र और महाराष्ट्र, तो आप भाव भंगिमा वैसे दिखाने के लिए उन्होंने चित्र की भाषा में वैसा बना दिया, परंतु ये अनुभव तो हम सब बहन भाइयों का है कि कैसे बाबा हमारे साथ साथ है। आजकल एक वो वैसे चित्र भी प्राय लोग पसंद करते हैं, कई जगह लगा हुआ होता है कि कैसे पहले एक बच्चा महसूस करता है कि भगवान मेरे साथ चल रहा है, और फिर अंत में दिखाया होता है कि उसके पांव के निशान नहीं है। तो वो प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आप पहले तो मेरे साथ साथ चलते थे और ऐसा आपके पांव के चिन्ह से भी ये प्रमाणित होता था, और अब आपके पांव के चिन्ह नहीं देखता हूं, तो मेरे मन में कई दफा ये होता है कि शायद आपने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो ऐसा आमतौर से लोग उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान ने कहा ऐसा नहीं, जब तुम थक जाते हो तो मैं तुझे उठा लेता हूँ, इसलिए दो पांव देखने में आते हैं, चार नहीं देखने में आते, वो मेरे ही पांव होते, तुम्हारे पांव तो मेरी गोद में होते। तो उसने कहा अच्छा, ऐसी बात है, तो साथ साथ इस तरह से भी अनुभव हो सकता है, कई दफा हम महसूस करते हैं, और बहुत दफा जो करण करावन हार अपने इस ज्ञान के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पारिभाषिक हैं, टेक्निकल हैं, हमने उनको नई अर्थ से नई व्याख्या से अडॉप्ट किया हुआ है। करण करावन हार यूज तो कई लोग करते हैं, लेकिन करण करावन हार बहुत से लोग सिर्फ उसको करावन हार मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही कराते हैं, प्रभु ही तो करा रहे हैं सब कुछ। तो उसमें फिर कई लोग कहते हैं कि जो चोर चोरी कर रहा है, डाकू डाका डाल रहा है, मर्डर कत्ल कर रहा है, तो क्या सब वो भगवान करा रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज तो भगवान के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है। तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि भगवान कराता है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी होती है, वाद विवाद होता है इस बात पर। और कई कहते हैं नहीं, भगवान तो कुछ नहीं कराता, वो एक दफा सृष्टि को रचने के बाद समाधि में है, वो तो परम धाम में या गोलोक में या ब्रह्मलोक में, जैसा वो मानता है वो तो अपना बैठा है, निश्चित रूप से सृष्टि उसने रच दी, और हमारे साथ जो बीत रही है वो तो हम जानते हैं, वो तो अपने तटस्थ है वहां बैठे। तो दोनों प्रकार की बात लोग जो कहते हैं वो एकांगी बात है, कुछ बात गले से उतरती नहीं दोनों भी। लेकिन बाबा ने हमें कितने अच्छे तरीके से इस पहेली का उत्तर दिया कि वो करण करावन हार है, करता भी है कराता भी है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो वो करता है, उसके गुण कर्म स्वभाव शक्ति स्वरूप कर्तव्य संबंध उसके अनुकूल हैं, जो हम नहीं कर सकते। सृष्टि की स्थापना, श्रृंगार, पालन, जो ये नई सृष्टि की रचना, इसका प्लान किस तरह से क्या कराना है, तो इसका करावन हार, इसका करण हार, करावन हार नहीं सॉरी, इसका करण हार वो स्वयं है, और हमको भी साथ में निमित्त बना के हमसे भी कराता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। जैसे अभी हमने मीटिंग की तो बाबा ने डायरेक्शन दी कि आधा खर्च कैसे करोगे, कम खर्च वाला मशीन कैसे बनोगे। तो हमसे बाबा निमित्त बना के हमसे कराता भी है, सिर्फ करता नहीं है। करता तो ये है जैसे उसने डायरेक्शन दी ये उसने किया, कराया हमसे कि भाई आप अब जो आपके करके गए हैं योग शिविर कनेक्शन में आए हैं, जिनकी सेवा की है, अब उनको सहयोगी बना के उनको भी आगे पार्टधारी बनाओ, इसमें इन्वॉल्व करो। तो वो करण करावन हार है। तो ऐसे बहुत से शब्द, जानी जानन हार, कई शब्द ऐसे निकलते हैं। तो इन शब्द की जब हम ठीक रीति से, जो बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे कोई बिरला ही जानता है, तो उनको जितना हम गहराई से अनुभव सहित नित्य प्रति जो हमारे जीवन में अनुभव होते रहते हैं उनसे जब हम समझते हैं तब हमको पूरा मालूम होता है। तो बात ये चल रही थी कि जो ये कहा गया कि आते नहीं नजर पर साथ साथ हो, तो ये कहा कवियों की कई बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि वो सारी बातें दार्शनिक रीत से ठीक हों ऐसा जरूरी नहीं है, भावात्मक रीत से ठीक होती हैं। तो वो जो कह रहा है वो अपने तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नजर भी आते हैं اور ساتھ ساتھ بھی ہمارے ہیں، ایسا محسوس ہم کرتے ہیں. ابھی ہم راتا نروایا جی سے نویدن کرتے ہیں کہ ان کے کچھ بہت اچھے انوبھو اور بہت اچھے وچار جب تک اکٹھے ہو جائیں. میں تب تک جب لوگوں کو مجمے کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی ڈگ ڈگی بجاتا رہتا ہے، پھر جب مداری سوئم آ جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی اب آپ کو وہ جادو کے کھیل وہ دکھائے گا. میں تو مجمع اکٹھا کر لیا تاکہ آپ اپنا شروع کر. تو آپ جو یوگ کے پریوگ کی بات کہیں ہمیں بہت سہائے گی، بہت اچھی لگے گی، اس پر آپ کچھ اپنا سنیں. لیکن آپ کے سننے کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں،
بھی سنگٹھن کی بات، ایسے گروپ کی بات وہ سن رہے تھے. تو کچھ باتیں بیچ بیچ میں ہر ایک کو انبھو میں بھی آتی ہیں، جیسا جیسا کاریہ سامنے ہوتا اس کے انوسار کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، تو وشیش روپ سے بابا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی ریزلٹ بھی دیکھتے. تو ایک تو یہ آیا کہ بابا کی جو آش ہے کہ 9 لاکھ کی مالا تیار ہو، اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمارے 3 لاکھ بھائی بہن ہیں، یوں تو جب 1.5 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے اس سمے دادی جی نے آگیا کی تھی ایچ ون، اور ہر ایک کے مکھ پر تھا، ہر ایک کو دل میں وہ بات اتر گئی تھی، اور اس کے پھل سوروپ میرا خیال ہے انیکوں نے پرشارتھ بھی کیا اور بھائی بہنوں کی وردھی بھی ہوئی. کر کے 2 سے 4 لاکھ نہیں ہوئے تو 2 سے 3 تو ہو گئے. تو سنکلپ آیا کہ 2 سال کے اندر ہر ایک بھائی بہن اگر 3-3 کو آپ سمان بنا دے، ادھک نہیں صرف 3 کو، 5 تو پھر وہ 9 سے اوپر ہو جائے گی مالا تو بھاری ہو جائے گی. مطلب 2 کو پھر چھوڑ دیں گے تو 15 لاکھ ہو جائیں گے. جی اچھا، یہ تو اور خوشی کی بات ہے. لیکن وہ 5 بھی کون ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو بابا نے جب جگدیش بھائی اور دوسرے سبھی سارا گروپ پہلے پہلے ودیش جا رہے تھے اس سمے خاص سارے گروپ سے پوچھا تھا کہ آپ جہاں سیوا کے لیے جا رہے ہیں کیا پہلے سے وہاں سرچ لائٹ بھیج رہے ہیں؟ تو ایسا کسی کا وچار اس سمے تک نہیں تھا، لیکن بابا کی وہ بات سننے کے بعد کہ جب آپ پہلے سے سرچ لائٹ بھیجیں گے تو کئی پہلے سے آپ کے سوپن لیتے ہوں گے، وہ آپ کو سوپن میں دیکھتے ہوں گے اور جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تھوڑا سا بھی ان کو معلوم پڑے گا تو آپ کو وہ پہچان لیں گے. تو ایسے ہم لوگوں کو کئی بھائی بہنیں ملے ہیں جو اس گروپ کے جانے کے پھل سوروپ اور بعد میں بھی جب دادی جی باہر گئے ہیں یا انیہ بھائی بہنیں گئے ہیں تو وہ سناتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ایسا آواز آتا تھا اور ان کے آنے پر ہمیں وہ سندیش ملا، ہمارا جنم تب سے ہوا ہے. کئی یہاں پر دادی جی کو سنمک بھی بولتے ہیں کہ آپ اس سمے آئے تھے تو اس سمے سے ہمارا جنم ہوا ہے. ایسے جگدیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے، رمیش بھائی کو بھی بولتے ہوں گے، گلزار دادی کو بھی بولتے ہوں گے، ہمیں بھی کوئی کچھ سنا دیتے ہیں، کوئی ایک دو ہر ایک وزٹ کے پھل سوروپ کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہیں. تو ایک تو یہ سنکلپ آیا کہ جب صبح کا ٹائم ہمارا یوگ کا ہے امرت ویلے کا، اس سنکلپ سے بھی تھوڑا سا اگر ہم اس ستھتی میں بیٹھ کر سرچ لائٹ دیں تو وہ جو 5 یا 3 جو نکلنے والے ہیں 2 سال کے اندر، کیونکہ بابا نے سنکلپ دیا ہے और जब मानते हैं जैसे शास्त्रीय भाषा में, अभी हम जगदीश भाई से बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात सुन रहे थे, मेरा तो बड़ा सीधा सीधा वो मिलिट्री वाला हिसाब है इसलिए ख्याल नहीं करना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा जो संकल्प देता है वो संकल्प के साथ साथ उसकी विधि और उसका भी टचिंग देता है और वो प्रैक्टिकल कार्य हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ज्ञान सरोवर का संकल्प प्रैक्टिकल में सामने आता है, तो जैसा संकल्प दिया वैसा ही टचिंग दी, वैसा ही प्लान बनवा दिया, वैसा ही उसका कारोबार प्रैक्टिकल में हो गया और हो रहा है। इसी तरह से वो पांच पांच के लिए जो दादी जी ने भी संकल्प दिया है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें कि हर रोज सुबह को अमृत वेले के समय उसी संकल्प से कि ये पांच कौन से बाबा के छुपे हुए लाल हैं, उनको ये खास सर्च लाइट पहुंचे, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये एक्सपेरिमेंट योग का अगर करके देखें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो वो पांच निकल आएंगे। अब उन पांच के अंदर भी कौन सी क्वालिटी निकलनी है, वो कुछ दिन पहले एक भाई हमारे यहाँ ये जो ज्ञान सरोवर में रिसर्च सेंटर बन रहा है उससे कनेक्टेड एक बात लेके आए थे मेरे पास, उसका नाम उन्होंने रखा है स्पार्क सेंटर, स्पार्क रिसर्च सेंटर, स्पार्क में ही सब कुछ है। अच्छा, तो अचानक मेरे पास आए, बैठे, बातचीत शुरू की कि इसके बारे में कोई आपके सुझाव हो, तो मुझे संकल्प चला कि बाबा की वाणी में, अव्यक्त वाणी में या तो साकार की वाणी में भी ऐसी बातें आई हुई हैं जो बाबा ने पहले से आह्वान किया हुआ है कुछ आत्माओं का कि बच्चे ऐसे साइंटिस्ट आएंगे, क्योंकि वो साइंस वाला था तो उसके अनुसार वही बात, ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो वो संस्कार अपने साथ ले जाएंगे और सत्युग में आपको इतना सुंदर वो सब चीजें बना के देंगे, जो लाइट देखने में नहीं आएगी कहां से आ रही लेकिन बहुत अच्छी लाइट होगी और पॉल्यूशन फ्री होगा, ये होगा। तो मेरे को आया कि क्यों नहीं ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट करें कि सुबह सवेरे सवेरे या जिस समय भी विशेष रूप से संगठित रूप से भी अगर ऐसा अभ्यास करके देखें कि वो आत्माएं जो सत्युग में आकर के साइंस का कारोबार करने वाले हैं, जिसको कहें साइंटिस्ट फॉर न्यू एज या गोल्डन एज, उनके प्रति खास योग का अभ्यास करके और उनको वो सर्च लाइट भेजें, ताकि जब ये किसी से बात करें, किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस करें, किसी को अपने ज्ञान की बात साइंस के हिसाब से लिख के भेजे, तो उनको वो फर्स्ट से टचिंग आए और वो साइंटिस्ट बाबा के ज्ञान की योग की बात सुन करके और वो भी सत्यु के योग्य बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक तो ये विचार आता था कि योग का प्रयोग करके इस तरह से देखें, दूसरा था बाबा ने कहा है कि आपके योग बल से ये प्रकृति भी पावन बनेगी, उसके लिए हम लोगों ने अभी तक कोई मिलकर के प्रयोग नहीं किया है। बात जरूर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से पॉल्यूशन फ्री कैसे बने और उसमें भी मेंटल पॉल्यूशन की बात जो आ रही है, तो मेंटल पॉल्यूशन जो है उससे कितना नुकसान होता है सब होता है, लेकिन उस पॉल्यूशन से फ्री होने के लिए हम लोग योग का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा विशेष हम लोगों की नहीं हुई। तो मेंटल पॉल्यूशन दूर करने के लिए और उसके फलस्वरूप प्रकृति का पॉल्यूशन कैसे दूर हो सकता है और प्रकृति सत्व प्रदान कैसे बन सकती है, इसका भी कोई प्रयोग करने का प्लान बनाएं अगर हो सकता हो, तो ये एक दूसरा विचार आया था। तो एक 9 लाख की संख्या और दूसरा ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए किस तरह से करें, और तीसरा एक जो साकार बाबा को अपना प्रयोग करते हुए हम लोग देखते रहे, और जगदीश भाई ने भी बहुत देखा होगा उनको, जो बाबा के पास उस समय जब हम लोग जाके बैठते थे तो हम लोग खुद को ही भूल जाते थे, बाबा की झोंपड़ी में अकेले कभी बाबा बैठे होते थे और कोई बात पूछने जाएं तो बाबा अपने उस एकदम गहराई में जब होते थे तो दिल में होता था बाबा को अभी डिस्टर्ब नहीं करें, पास बैठ जाते। पर उस पास बैठने के फलस्वरूप उस वाइब्रेशन में हम लोग खुद को भूल जाते और बल्कि इतने तक जब बाबा थोड़े टाइम के बाद दृष्टि देते तो दृष्टि लेने का ही मन होता। और जब बाबा पूछते कि बच्चे कैसे आए, कुछ पूछना है, तो ये भी भूल जाते कि क्या पूछना। और उस समय का बाबा का जो अभ्यास, जो बाबा ने मुरली में बाद में सुनाया हुआ है कि कैसे बैठे बैठे शरीर छोड़े, शरीर से अशरीरी होने का अभ्यास और एक के अंत में जाने का अभ्यास, जो बाबा ने कहा एकांत और एक के अंत में जाने का, वो अभ्यास हम लोगों को करने का अधिक टाइम अभी तक नहीं मिलता। मैं समझता हूं आप भी सहमत होंगे इस बात के लिए कि मुश्किल ही कोई
कि जब वो वहां गई तो कैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमने आपको पहले देखा है, यहां आने से पहले हम आपके इंतजार में थे, आप इतनी देर से क्यों आए। कभी उनको कहेंगे, आपको अनुभव सुनाएंगे, वो एक अलग बात रही। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो आत्माओं को हम योग का सकाश दें और उनको योग की वाइब्रेशन भेजें, पहले से उनका आह्वान करें कि वो आत्माएं आए। अगर हम ये भी साथ साथ ख्याल रखें कि जब सेंटर पर कोई भी बहन भाई आते हैं तो ये बाबा ने इनको भेजा है। बहुत दफा ऐसा होता है वो हमारे आराम का समय होता है, हम किसी काम में बिजी होते हैं, कोई और हमारी कमिटमेंट होती है, तो हम थोड़ा उनको नजरअंदाज कर देते हैं, पूरी तरह से रोक नहीं देते। लेकिन ये बाबा ने उनको भेजा है, बाबा के सेंटर तक ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता। किसी के मन में ऐसा गोल्डन संकल्प शुद्ध विचार आया होगा तो बाबा ने उसको भेजा है, ऐसा समझकर अगर हम पूरी अटेंशन से, पूरा जी जान लगाकर, रुचि से उस आत्मा के प्रति, उस वृत्ति से, जिसको बाबा कहते हैं कि सिर्फ बोल से नहीं वृत्ति से अगर हम सेवा करते हैं तो देखा गया है कि उसका रिजल्ट कुछ और होता है। अगर हम फॉर्मेलिटी के तौर से आया है और इसको चलो कोर्स कराना है, एक अरुचि से कुछ कार्य करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि बाबा का भेजा हुआ है, तो भी उसमें फर्क पड़ता है। ये भी मेरे ख्याल में हम उस समय योग युक्त हों, जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अपने नीडल्स को आजकल तो चेंज कर देते हैं लेकिन स्टेरिलाइज करते थे, या अपने पूरी प्रिकॉशन लेते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो हमारे भी संस्कारों का इन्फेक्शन इस आत्मा को न लगे, बल्कि हम अपनी योग की स्टेज में रहें जिससे ये आत्मा, इसका कल्याण हो। अगर हम खुद भी उस स्थिति में होते हैं तो भी हमारे सेवा का फल कुछ और होता है। जैसे कि बताया गया, मुख्य बात यही है कि हम बॉडी से, प्रकृति से डिटैच करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, साथ साथ शरीर से डिटैच होने के जो हमारे पुराने संस्कार हैं। कई दफा शरीर से डिटैच होने का अभ्यास तो हमारा चलता रहता है लेकिन जो पुराने संस्कार हैं उनसे डिटैच नहीं होते, वो अपना एक्ट कर जाते हैं, प्ले पार्ट प्ले कर जाते हैं, वही वेगन डालते हैं, फिर से हमें बॉडी कॉन्शियस बना देते हैं। तो उनसे भी डिटैच होने के लिए अगर हम साक्षी अवस्था में रहें, चेकिंग करें, जैसे हम समझते हैं कि कुसंग से हमारी अवस्था नीचे को आती है, तो केवल व्यक्तियों के कुसंग से नहीं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनका भी जो संग है वो कुसंग है, हमारी अवेयरनेस में वो ना आए, उनसे हम डिटैच हैं, ये भी हमारे अभ्यास के लिए जरूरी है। कई दफा बाबा ये कहते हैं कि जैसे ड्रिल करते समय कोई अभ्यास करता है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट अबाउट टर्न, हाथ ऊंचे करो, नीचे करो, तो उनके काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और वो अपने शरीर को जैसा चाहे मोड़ लेते हैं।